आज की मुरली याद करें सवेरे की। पांचों मुरली के समय सबसे अधिक बुद्धिमान कौन कौन? जो पवित्र हैं, लक्ष्मी नारायण उनमें वो तो हैं ही सबसे पवित्र, ब्रह्मा सरस्वती वो सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। माताएं थोड़ी और आगे आ जाओ जरा, आज थोड़ी आपसे रूढ़ियान करनी, आज मेरे आगे कैमरा नहीं है तो आज दूसरी क्लास करेंगे। भाई लोग भी आगे आ जाओ, आगे वाली सीट पे भी आ जाओ। अमित तुम भी आगे आ जाओ कुर्सी पे। आज बाबा की मुरली में एक दूसरी लहर थी, तुम आगे आ जाओ एकदम आगे। अरे हाथ वाले इसको आगे करो, नाम मैं नहीं जानता, यहाँ आ जाओ। आज बाबा की मुरली में दूसरी पॉइंट थी, एक ही इम्पोर्टेंट बात, क्या होना चाहिए हम सबको? बहुत खुशी। कभी कहा हड्डी खुशी हो, अपार खुशी होनी चाहिए। साकार में सिंधी में कहते थे खुशियों में खग्गियां मारनी चाहिए। बहुत उछलते हैं ना, खुश हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं। बहुत खुश हो जाना चाहिए तुम्हें। जो मनुष्य खुश होता है क्या होता है उसको? डॉक्टर भी बैठे हैं, मैं एक मेडिकल बात भी सुनाऊंगा आप सबको। जो बहुत खुश रहते हैं, एक तो वो व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहते हैं, है या नहीं? सच्ची बात, खुशी जैसी खुराक नहीं। क्यों कहा ये प्राचीन काल से, सोचना है सबको। और इसकी एक गहरी बात समझनी है। डॉक्टर सतीश गुप्ता नीचे हार्ट के प्रोग्राम चलाते हैं ना, जिसे कैड कहते हैं, हार्ट ठीक करते हैं ना, योग से, अच्छे संकल्पों से, बिना ऑपरेशन के, बिना दवाइयों के। 10,000 पेशेंट उन्होंने ठीक कर दिए हैं। तो वह एक बहुत अच्छी बात सिखाते हैं सबको कि जब हमें बहुत खुशी होती है तो हमारे अंदर सेल्स हैं ना शरीर में और ब्रेन में, कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं, सेल्स हैं, वो चार्ज हो जाते हैं। जो सेल डेड हो गए, जो मर गए हैं, वो भी जिंदा हो जाते हैं। उसके अंदर जीन्स होते हैं, बहुत एनर्जी आ जाती है उन सब में, इसलिए हेल्थ अच्छी हो जाती है। तो हमें बहुत खुश रहना है। और एक बहुत अच्छी बात जो हम सदा सुनाते हैं और हम सब के बहुत काम की है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, याद रखेंगे सभी, चलो माइक तो चल रहा है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। तो खुशी के जितने संकल्प होंगे, पावरफुल एनर्जी जाएगी ना ब्रेन में और पूरे शरीर में, स्वस्थ हो जाएंगे। मैं रोज देखता हूं, मेरे पास भी बहुत पेशेंट आते हैं, मुझे डॉक्टर समझने लगे हैं लोग कि मैं भी कोई इलाज करता हूं। एक माता आई अभी नीचे शांतिवन में, बीमार बहुत, और अपनी सुनाए मैं बहुत बीमार हूं, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, मेरी नहीं सुनती थी। मैंने कहा माता जी अब थोड़ा नीचे आ जाओ, बुद्धि मेरी तरफ लगाओ जरा, मैं भी कुछ बता रहा हूं आपको। मैंने उससे पूछा मैंने क्या बताया, वो याद ही नहीं उसको, अभी बताया। तो मैं देखा एक की बात नहीं, बहुतों की है, माताओं की नहीं भाइयों की भी है। मन से ज्यादा बीमार तो क्या हो जाता है, एकदम तन और ज्यादा बीमार। और मन यदि हेल्दी हो तो तन में रोग हो भी लेकिन उसके अधीन नहीं होंगे। आएंगे रोग तो हैं, अब कलयुग का अंत है, कलयुग के अंत में कोई सतयुग जैसी हेल्थ तो मिलेगी नहीं, द्वापर जैसी भी नहीं मिलेगी, अब से 100 साल पहले जैसी भी नहीं मिलेगी। कितनी बीमारियां नई नई आ गई। एक भाई शांतिवन का, उसके पेट में कुछ ऐसा हो गया, दो जगह गांठे, हमारे दोनों बड़े डॉक्टर ने कह दिया इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है और तुम 6 मास से ज्यादा नहीं जी सकते। छोटी आयु का है वो, शायद 35 साल से ज्यादा नहीं होगा। अभी आप समझते हैं डॉक्टर ऐसा कह दे तो क्या होगा। लेकिन मैंने उसमें बल भरा, तुम संकल्प करो मुझे संगम के अंत तक जीना है, जीना है। जो बीमारी आई है वो जाएगी जरूर। बहुत अच्छे अच्छे संकल्प उसको बताए हमने और उसने शुरू कर दिया। उसका चेहरा बदल गया थोड़ी देर में, जो एकदम हो गया था ना, क्या होगा, एकदम जागृति आ गई। तो हमारे संकल्पों में बहुत पावर है और उसमें भी खुशी। और दूसरे संकल्प कौन से होते हैं बोलो, नशे के। ये दोनों संकल्प तो जीवन को ही बदलने वाले हैं। तो हम बहुत अच्छे संकल्प करें। मैंने आपको नजदीक इसलिए बुलाया, खुशी और नशे के संकल्प निकालेंगे। प्योरिटी से बुद्धि बढ़ जाती है। आप सबको पता, भारत वालों को अच्छी तरह पता है, भारत में नियम था जब तक विद्यार्थी काल है ब्रह्मचर्य पालन करना है। उसी से बुद्धि एकाग्र रहती थी, श्रेष्ठ रहती थी। जब से ये छूटा, छूटा सब स्टूडेंट्स का छूटा, तब से टेंशन, पढ़ाई का प्रेशर, दिमाग पर अननेसेसरी दबाव, अनेक बीमारियां, व्यसन, ये सब बढ़ गया। बाबा ने आकर फिर से प्योरिटी प्रारंभ की और इससे हमारी बुद्धि बहुत डिवाइन बनती है। दिव्य बुद्धि कहा ही जाता है। जो बुद्धि पवित्र हो, जो बुद्धि ज्ञान से भरपूर हो, जिसमें ईश्वरीय नशा हो, फाइनली योग युक्त हो। तो हम प्योरिटी से अपनी बुद्धि को बहुत श्रेष्ठ बना रहे हैं। देखो, बाबा ने ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला, इसमें प्राइज पहली किसको मिलती है अमित? अश्रत्नों को, पास विद ऑनर होने वालों को। और उसमें पहले दो हैं ब्रह्मा सरस्वती, सबसे बुद्धिमान है या नहीं, जो विश्व महाराजन बन गए, जो निरंतर योगयुक्त हो गए, जिन्होंने सारे ज्ञान को समा लिया जीवन में, वे सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। हमारी दादी जानकी कोई देखो, बुद्धिमान है या नहीं? अब की बात करें, पहले तो वो ठीक ठाक थी, अब से 5-7 साल पहले से तब तो बुद्धिमान थी, लेकिन अब जबकि बीमारियां पकड़ती रहती हैं, बुद्धिमान है या नहीं? ऐसी बातें सुनाती रहती है, मैं भी सोचता हूँ वाह, दादी की बुद्धि तो वही चमत्कारी है अभी तक भी। तो ये अश्रत्नों की, जो पासवी डोनर हुए, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि, उन्हें सबसे बड़ा प्राइज मिलता है। फिर 100 बाकी फर्स्ट क्लास आत्माएं, वो भी बहुत बुद्धिमान, जो विश्व पर राज करते हैं, सभी विश्व पर राज करने वाले सभी बुद्धिमान है ना। मैं एक मुरली पढ़ी, उसमें एक बहुत सुंदर लाइन थी, वो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत अपील किया उस बात ने, हालांकि हम जानते हैं सभी, कुछ नई बात नहीं, हम 1000 बार सुन चुके हैं। हमारी पढ़ाई राजाई के लिए है ना। तो बाबा ने कहा, बच्चों को ये ख्याल रहता नहीं कि विश्व की बादशाही पाने के लिए पढ़ रहे हैं। पिछले के सब पहले कर दिए, पढ़ाई से विश्व की बादशाही मिलेगी ये तो है ही, लेकिन विश्व की बादशाही पाने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर ये नशा रहे तो बहुत कुछ बदल जाए। तो ये नशे की बातें है ना। एक एक ये सुंदर संकल्प हमारे संकल्पों को शांत करता है, क्योंकि कलयुग के अंत में सबसे बड़ी महामारी कौन सी शुरू हो गई है? संकल्प व्यर्थ तूफानी, और इतने तूफानी बनते जा रहे हैं कि ये सजाएं बन रही हैं। धर्मराज की सजा का एक स्वरूप ये संकल्प होते जा रहे हैं दिनों दिन। तो हमें खुश रहना है, रहना है या नहीं, या रहते ही हैं? कहो ना, रहते ही हैं। बाबा साकार में थे ना, बाबा को इतना नशा था ना आखिर में, आखिर 3 साल बाबा के जबरदस्त तपस्या किए थे, निरंतर तपस्या। मामा के जाने के बाद ब्रह्मा बाबा ने गहन साधनाएं कर ली थी, तो नशा रहता था। क्या कहते थे सुनिए अपने मुरली में बात, कोई तुमसे पूछे कैसे हो, क्या उत्तर देंगे सुरेश? हाँ वो तो है चाल फरिश्तों की। बाबा ने कहा हमसे पूछते हो कैसे हो, जिन्हें पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर मिल गया उनका हालचाल पूछते हो? नशा था बाबा को बहुत। तो बाबा के महावाक्यों में, शिव बाबा के महावाक्य होते हैं और ब्रह्मा बाबा के भी होते हैं ना, तो वो नशा स्पष्ट दिखाई देता था। तो चले अब हम निकालेंगे खुश रहने के संकल्प, ताकि सवेरे से ही हम खुशी भर दें अपने मन में। खुशी हमें चार्ज करेगी, बीमारियों को भी नष्ट करेगी, समस्याओं को भी नष्ट करेगी, योग बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो छोटी मोटी बातें आती है ना माताओं के कमरों में, मेरे पास भी आती रहती है कोई कोई माताएं, मैंने कहा भाई मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है अब, जब मैं सेवादारियों को डायरेक्ट संभालता था तो माताओं से बातचीत करके ठीक करा देता था, अभी तो अर्जुन भाई और दूसरों का है। तो जो छोटी मोटी बातें आती है ना कमरों में, घरों में, दो चार सोए हुए हैं, कोई कैसा कोई कैसा, वो भी खत्म हो जाती है, हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, हम सुखदायी बन जाते हैं। चलो शुरू करें खुश रहने का पहला संकल्प। कौन बोलो पहले, कौन सुनाएगा बोलो? हाँ, भगवान स्वयं आकर उठाता है। तो क्या करेंगे जब सवेरे आंख खुले, क्या सोचेंगे बोलो ना, अब तो क्लियर है, बाबा ने उठाया है, और उठाया है तो क्यों उठाया है? कुछ देने के लिए, वरदान देने के लिए, अपनी शक्तियां देने के लिए, झोलियां भरने के लिए। कल से आंख खुलते ही पहला संकल्प ये करेंगे। बाबा ने कहा ना मुरली में खाट भी हिलती है, उठाते हैं बाबा, सबको कहीं ना कहीं अनुभव है बाबा उठाते हैं। तो सवेरे उठते ही हम इस खुशी से दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। माताएं अपने बच्चों को उठाती हैं, पोत्रों को उठाती होंगी, कितना मुश्किल होता है आजकल उठाना, करवटे बदलते रहेंगे, हाँ हूँ करते रहेंगे, मारते भी रहेंगे हाथ पैर, अभी नहीं उठूंगा, अभी स्कूल जाना ही है, तो फिर उठना पड़ता है। और बाबा बड़े प्यार से उठाता है, और हम उठते हैं, हम भी बच्चों की तरह करते हैं। अब सच्ची बात बताओ, हैं? उठते हैं? बच्चों की तरह भी कभी कभी कर देते हैं, थोड़ी करवटे बदलते रहते हैं, थोड़ा और सो लेने दो बाबा, अभी तो गहरी नींद आई थी, अभी आपने जगा दिया। अब दूसरा संकल्प बहनों की ओर से खुशी का, मुझे कौन मिला, वाह माताएं ने कितनी खुशी से बताया, कौन मिला है मुझे, ये याद करते ही तो खुशी में उछल जाएंगे, खाट भी छूट जाएगी। तीसरा संकल्प भाइयों की ओर से, विकास बोलो, ठंडे नहीं बैठना है, पढ़ाई से हम क्या बन रहे हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं, बहुत ऊंची पढ़ाई का भी नशा हो जाए। हमें याद है, हंसी की बात सुना देता हूँ, अरे तो कैमरा नहीं है ना, तो जरा फ्री बात कर लेते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की ना बचपन में, तब तो पढ़ते नहीं थे कोई, वो बहुत समय पहले की बात है, तो 55-56 इसकी बात है। तो गांव में हमारे पिताजी पढ़े लिखे थे, उन्होंने एक जो थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था उसको कहा कि तुम बच्चों को पढ़ाया करो, या तो कोई किसी को पढ़ाता ही नहीं है, मुंशी जी कहते थे उन दिनों, मुंशी जी बन गए। तो थोड़े से बच्चे पढ़ने जाते थे, तो बाबा जैसे कहते हैं ना, जो गांव के होते हैं ना, वो कहते हैं हम तो खेती करेंगे, घास ही काटेंगे, ये क्या बंधन वंदन करें। तो जो बच्चे पढ़ने जाते थे ना, अपने कपड़ों को थोड़ी इंक लगा लेते थे कि हम पढ़ने वाले हैं, मतलब उनको अलग ही खुशी होती थी। तख्ती होती थी लकड़ी की, उसको पोतते थे, लिखते थे, स्याही कलम बनती थी। क्या पढ़ाई का समय था वो, ये सब पेन वैन डॉट पेन ये तो बाद में आए, सब कुछ भी नहीं था। तो हमारी पढ़ाई का नशा, रियली पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है ना। फिर माताएं बताओ खुशी, आगे की टीचरों बहुत खुश हो रही हैं, बोलो। वाह वाह, जिसको जिसको लोग मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ ढूंढने जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, उसने हमें ढूंढा, अपना बना लिया, और ढूंढ के केवल चला नहीं गया, जीवन साथी बन गया। मैंने देखा इस बार, हम दिल्ली किसी काम से गए थे, तो एक दिन था, हमने सोचा मथुरा, हम इधर के ही हैं और मथुरा कभी देखी नहीं, क्या है ये गोवर्धन पर्वत, कितना बड़ा है, देखें तो सही। तो गए, कार से भी कर लेते हैं परिक्रमा, तो कार अलाव नहीं थी, तो ई रिक्शा में गए, तो देखा कितनी माताएं ज्यादा लेट के जाती हैं। उन्होंने छोटा सा वो भी रखा हुआ है कुशन, छोटा सा 2x5x6 का, और उसको बिछाया, लेटे, हाथ आगे किया, एक पत्थर रखा, फिर कुशन वहां से आगे रखा, फिर उठे, फिर लेटे। अभी उठना, बैठना और फिर लेटना, जो मोटी हैं माताएं उनसे कैसा होता होगा। एक को हमने देखा, बेचारी उठ के बैठती थी, हमें देखने मजा आ रहा था बहुत, अभी वो ऐसे वैसे भी करती थी, फिर लेटती थी। कितने दिन लगेंगे उनको 21 किलोमीटर की यात्रा करने में, सोच लो। और इधर प्रभु जी ने क्या कर दिया हम सबके लिए, पढ़ाता भी है तो कितने अच्छे सोफे बना दिए हैं, मजे से बैठो, गद्दों पर बैठो, पढ़ो, राजा ही लेनी है ना, ऐसे वैसे स्टूडेंट थोड़ा ही है। मैं सोच रहा था, देखो भक्ति, वो भी गोवर्धन की परिक्रमा, सोचते हैं श्री कृष्ण ने इसको उठाया था, इतना लंबा चौड़ा पहाड़ भी नहीं, कहीं तो प्लेन ही है, कहीं टूटा फूटा, छोटा सा ऊंचा नहीं है, सोचने की बात है भला, शास्त्रों में भी कैसी कल्पनाएं हैं। पहाड़ कौन सा उठाया था, परिक्रमा लोग किसकी कर रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है, बाबा ने मार्ग भी सरल कर दिया या नहीं, कितना सरल मार्ग, कितनी खुशी की बात है। और बताओ बहने को ज्यादा उछल रही खुशी में, मुझे दिख रहा है। उमा बहन ठहरो, उमा बहन साथी बन गया, भगवान साथी बन गया, बहुत खुशी और नशे की बात है। राकेश ठहरो, आज उनसे पूछता हूँ जो कभी नहीं बोलते। भगवान ने अपना बच्चा बना लिया, और बच्चा बना के सब कुछ दे रहा। त्रिभुवन बोलो, सबको बोलना, ज्ञान सरोवर वाले बैठे। कैलाश भाई बोलो, आज बोलो, जीवन बदल दिया उसने हमारा, बहुत बड़ी बात है ये भी। भक्ति में, शास्त्रों में, वेदों के, शास्त्रों के विद्वान कभी जीवन बदलने की नहीं सोचते। एक व्यक्ति आर्य समाजी बहुत बहस कर रहे मेरे से, 4-5 बैठे, साथ में सिगरेट भी पी रहा, मैंने कहा बहस करने से पहले सिगरेट छोड़ने की प्रतिज्ञा करो फिर बात करना। चुप हो गया बेचारा। वेदों में ये लिखा, दर्शनों में ये लिखा है, स्वामी दयानंद ये कह गए हैं। मैंने कहा सिगरेट पीने को छोड़ने को नहीं कह गए थे? कोई नहीं सोचता संसार में शराब पीने लगे हैं। अच्छे अच्छे धर्म वाले जिनके नियम बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनको आलू खाना भी मना है, वो क्या क्या खाने लगे। धर्म कहाँ पहुंच गया? जीवन परिवर्तन की बात तो कहीं है ही नहीं। बाबा ने जीवन बदल दिया, विचार बदल दिए, जीना कैसे है ये सिखा दिया, तो बहुत खुशी की बात है ना। अब माताएं फिर से वह स्वयं भगवान की दृष्टि मुझ पर पड़ी और रोज पड़ती है, ये हमें याद रखना है। बाबा अपने बच्चों पर रोज कम से कम एक बार दृष्टि डालता है। और बड़ी पावरफुल बात, हाँ ठहर जाओ अमित, बहुत पावरफुल बात, तुम्हें ज्यादा खुशी हो रही है, तुम्हें भी हो रही है, एक बात सुन लो। जो बाबा के अमूल्य रतन है, ध्यान से सुन लेंगे, बाबा वतन में कई बार उन्हें देखता है क्या कर रहे हैं। अब जो अपने को अनमोल रतन समझे वो ये याद रखे कि बाबा कई बार देखता है, बस उसको तो संकल्प करना है और नीचे का सब कुछ दिखने लगेगा, मन भी दिखने लगेगा, मन में क्या सोच रहे हैं। ऐसे तो नहीं ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है और बातें कर रहे हैं, ऐसा बहुत करते हैं, कईयों को वैल्यू ही नहीं है उसकी। तो बाबा की दृष्टि पड़ी और रोज पड़ती है। बोलो अमिताभ। हाँ बोलो, पूरी लाइन बोलो। ये सत्य बात है कि ये ब्रह्मा भोजन जो पवित्र आत्माओं द्वारा बनता है देवताओं को भी आकर्षित करता है। बोलो, आप बोलो, नाम मुझे भूल गया, बोलो। हाँ दिव्य बुद्धि दे दी, बहुत अच्छा। तो बाबा ने जो मांगते थे, माताएं मांगती है ना इस बच्चे को बुद्धि दो भगवान, और बाबा ने हम सबको बहुत सुंदर बुद्धि दे दी, ज्ञान भर दिया, दिव्य विवेक भर दिया है हमारी बुद्धि में, तो बहुत बड़ी चीज। राम और जन्म जन्म का भाग्य बनाने की कलम ही हमें दे दी। लो तुम्हारे हाथ में है, लिख लो अपना भाग्य जो लिखना चाहो, ये नहीं भगवान भाग्य बनाएगा। बोलो, वेरी गुड। संगम युग में भगवान हमारे लिए खाली बैठा है, कहता है मुझे यूज करो, तो क्या करेंगे? यूज करें। कोई भी चीज हमारे लिए होती है हम उसे यूज करते हैं ना। बोलो, जिसको भी ख्याल आए हाथ उठाएंगे, बेनिफिट से बोलो। बेफिक्र बादशाह बना दिया बाबा ने, बन गई ना बादशाह, मस्त फकीर। जानकी दादी को टाइटल देता था बाबा, ये मस्त फकीर है, कोई चिंता नहीं, मस्त रहते हम। सारे बोझ अपने ऊपर ले लिए। दोनों चीजें हमें करनी है, एक तो बोझ पैदा ही नहीं करना है जो बाबा को देना पड़े, ये भी तो स्थिति है ना। कई लोग सोच सोच कर भारी होते जाते हैं, और अगर कुछ हो जाए तो दे दो, विकास अब तुम्हारा नंबर है, बोलो फटाफट। नागा भाई बोलो, पढ़ाने आते हैं। देखो टीचर भी कैसा मिला, प्रोफेसर, ज्ञान का सागर, जिसको पढ़ना नहीं पड़ता। कितने बड़े प्रोफेसर हो फिर भी कुछ ना कुछ तैयारी करके जरूर आते हैं, और ऐसा जो ज्ञान का सागर है हमें पढ़ाने के लिए आ गया। बोलो पीछे वाले भाई लोग, कल्प कल्प का विजयी बना दिया, माया पर विजयी बना दिया हम सबको। त्रिभुवन तुमने बोल दिया, पद्मा पदम भागशाली बहने बताओ, और गौड़ली यूनिवर्सिटी बोलो, माता पीछे की हाथ उठा रहे, एक बोले हमें खुदा मिल गया तो किसी से नहीं मिलना, तो सबसे ऐसे नहीं, घर वाले और बच्चे आपको निकाल देंगे घर से कि अपने खुदा के पास ही जाओ। साक्षात्कार के लिए तरसते हैं भगवान के, वो भी क्षण भर के लिए देख लें कुछ, और वो हमारे सामने बैठता है, रोज बैठता है, और जब चाहे उसे देख सकते हैं जी भर के। आप बोलो बीच वाले भाई, बाबा हमारा दोस्त बन गया, बाप बोलो, बोलो। वरदानों से झोली भरते, हीरे जैसा बना दिया है, तो बाबा खुशियों के भंडार लेकर आया है हमारे लिए। मुरली सुनते बहुत खुशी होती है ना, लगता है ना भगवान बोलता है, हमसे बात करता, अपने बच्चों से मिलता है, परिवार से मिलता है। बाबा को किसी ने कहा था कि जो बाबा साकार में थे ना, बाबा आप ऐसे ऐसे कड़े शब्द क्यों बोलते हो, बाबा ने कहा मैं तुम्हें थोड़ा ही बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ, मेरा परिवार है वो, मुझे अपने बच्चों को सुधारना है, मैं उन्हें कुछ भी कहूँ वो मेरे हैं। नशा चढ़ जाता है ना मुरली सुनते, तो रोज मुरली खुशियों का भंडार लेकर हमारे लिए आती है। और जिस कार्य में आप सब माताएं और कई भाई आए हैं, सेवा, सेवा भी हमें बहुत खुशी प्रदान करती है। जहाँ खुशी का माहौल होता है ना सेवाओं में, वहाँ अनेक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। मैंने सुनाया था, मैंने नीचे तो ऐसे किया, ज्ञान सरोवर में भी कभी कभी कर देते हैं, कि जिसको मानसिक रोग है ना, हम उन्हें कहते हैं सब्जी डिपार्टमेंट में चले जाओ, खूब सेवा करना, वहां जरा रिमझिम ज्यादा रहती है, ठीक हो गए लोग। एक लड़का बहुत अच्छे घर का, अभी 6 मास रहा नीचे सब्जी डिपार्टमेंट, उसका सारा हिलता था, सिर भी हाथ भी सब एकदम, उसको स्ट्रोक आ गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी। दूसरा लड़का भी, उसका 2 ही बच्चे हैं, वो भी मानसिक रूप से कमजोर है। अब उसकी माँ आई थी, कह रही थी उसको ले गई है, अभी अभी ले गई है बाबा के ग्रुप के बाद, कह रही थी अब दूसरे को भेज देती हूँ। लेकिन माँ की स्थिति सचमुच देखने लायक, स्ट्रांग। मैंने उसको कहा तुमको 2 लड़के, साहूकार घर, 2 तुम्हें लड़के, और दोनों ही ऐसे हैं। कहा नहीं, मैं कुछ नहीं सोचती भाई, इनका अपना अपना भाग्य है, हमारा भी भाग्य था इनके साथ, जो भी है बाबा के हैं, ये भी खुश रहते हैं, कुमार हैं दोनों ही, हमें कोई समस्या नहीं, कोई भारीपन नहीं है। तो मैं कहा तुम तो सचमुच शिव शक्ति हो, बहुत अच्छी स्थिति वाली, न कोई मन की परेशानी, न कोई दुविधा मन में, बच्चों को संभालती है दोनों को बहुत अच्छी तरह। तो ऐसी माताओं की स्थिति देखकर बड़ा मुझे तो बहुत आनंद आता है कि माताएं जब शक्ति बन जाती हैं तो विश्व का कल्याण हो जाता है। यहाँ वाली भी सब शक्तियां है ना, शिव शक्तियां, या घबराने वाली शक्तियां, छिपकली से डरने वाली शक्तियां है, छिपकली से डरते तो नहीं ना, कई बहुत ही डरती हैं कन्याएं, तो छिपकली कमरे में आ गई, अब इसको निकालो नहीं तो सोया नहीं जाएगा। तो छिपकली तो बेचारी खुद ही डरती है, भागी फिरती है, काटती भी नहीं है। चाय बिल्ली के ऊपर तो नहीं गिरी। हमारे वहां तो कमरे के आगे बंदर आते रहते हैं, जेंटिल हैं, बहुत जेंटिल बंदर हैं, ये लंगूर वैसे भी जेंटिल होते हैं, तो निकलते रहते हैं लोग, वो कुछ करते नहीं, खाने को डाल दिया तो खा लेते हैं। तो बाबा हम सबके लिए खुशियों का भंडार लेकर आया है। इस खुशी के चिंतन में अगर हम रहेंगे, देखिए सबसे सुंदर बात है पुरुषार्थ में चिंतन। चिंतन अर्थात बाबा की बातों को याद रखना, चिंतन का और कुछ अर्थ नहीं है। कई जो सोचते हैं हमारा चिंतन चलता नहीं, वो सोचना गलत है। बाबा की बातों को याद रखना, जो हम सब ने अभी चर्चा में लाई, इनमें से 5-7 बातें भी याद रखना तो चेहरा खिला रहेगा, यही तो चिंतन है। तो व्यर्थ आपे समाप्त हो जाएगा। और बाबा ने जो 3 बातें कही थी ना उस दिन अव्यक्त पे, बच्चे परेशान 3 बातों से रहते हैं, चंचल मन, भटकती बुद्धि, पुराने संस्कार। मैं इस पे क्लास तो 2-3 करा चुका हूँ, लेकिन आज आपके सामने भी रिपीट कर दूं वो बाबा की बात। और रिपीट करने का अर्थ है कि सभी वो एक छोटा सा चेंज लाएंगे जीवन में। मेरे संस्कार हैं, किसी के संस्कार हैं परेशान होने के, मैं 2-3 संस्कारों की बात करूं। किसी के संस्कार हैं छोटी बात को बड़ा करके चिंताओं में रहने के, किसी के संस्कार हैं जिद के। एक बहुत खतरनाक संस्कार जो कुछ लोगों में होता है फीलिंग का, जो मनुष्य को बिल्कुल डाउन कर देता है। किसी का संस्कार होता है थोड़ा भी क्रोध आ जाता है, किसी किसी में होता है इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। तो जो भी ये संस्कार हैं, बाबा ने क्या कहा, जब बच्चे कहते हैं बाबा ये मेरे संस्कार हैं, क्या कहा, ये मेरे नहीं हैं, ये तो आदि से आए, द्वापर से भी कहां आए थे, कलयुग के भी आधे के बाद आए, ये तो रावण के हैं, मेरे कहां से आए। तो ये मेरा शब्द यहां से हटाएंगे, मेरे संस्कार कौन से हैं, हाँ वर्णन करो उनके कौन से, आदि और अनादि। देखो अनादि माना आत्मा के साथ, ज्ञान का मेरा संस्कार है, ज्ञान, ज्ञान लेना देना, चिंतन स्मरण, ज्ञान स्वरूप जीवन, उसे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं ना। ज्ञान न मिलता तो कैसे कर्म रहते, जिनके पास ज्ञान नहीं है उन्हें तो पता भी नहीं वो पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। अब दुनिया का हाल देखो, आजकल लोगों को, अच्छे अच्छों को ये पता नहीं कि वो पाप कर रहे हैं, ज्ञान की कमी है ना। और पाप ही पाप हो रहा है, खा भी पाप कर रहे हैं, कर्म भी पाप ही पाप हो रहा है। नॉन वेज खाना तो ऐसा हो गया संसार में, आजकल सोचते हैं ये तो सब्जियों की तरह खाया जाता है, ये बने ही हमारे लिए हैं। उनको पता ही नहीं कि इससे हिंसक वृत्तियां बढ़ती हैं, इनसे वासनाएं बढ़ती हैं, इनसे पतन होता है। काम महाशत्रु है सभी पापों का बीज, उसने तो तूफान मचाया हुआ संसार में। मुझे तो आश्चर्य होता है जब से वेस्टर्न कल्चर भारत में आई, वेस्टर्न कल्चर माना अंग्रेजों की कल्चर, तब से भारत में क्या हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और इससे क्या नुकसान हो गया, करोड़ों लड़कियों के चित्त में अशांति और टेंशन। मेरे पास तो समाचार आते रहते ना, बातें होती रहती हैं, कितना वो दुखी होती हैं, कितनी परेशानी होती है, कितने पाप बढ़ते हैं, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है, डिवोर्स हो रहे हैं। भारत में डिवोर्स बहुत बुरा माना जाता था, तलाक, और अब तो होने ही लगे। बस जैसे मैरिज हुई तो अभी तैयार रहना पड़ेगा कि कभी भी डिवोर्स हो सकता है। जैसे विदेशों में होते हैं ना, विदेश में है ना, क्रिश्चियंस के बीच में 3-3 बार तो हरेक को शादी करनी है, पता रहता है उन्हें कि शादी की है, 5-7 साल में अलग होना ही है, इसलिए अकाउंट अलग, कार अलग, सारा खेल अलग। जब छुट्टी हुई, छुट्टी, ओम शांति, बाई बाई, दूसरी करते हैं। अब वहां तो कॉमन है, अब यहां भी होने लगा, लेकिन यहां की कल्चर, हमारे देश की कल्चर इसको स्वीकार नहीं कर रही ना। एक बार अगर किसी का डिवोर्स होता है तो उसकी आधी मृत्यु, मैं तो कहूंगा सारी मृत्यु। मैं देखता हूं ना लोगों को, खुशी सदा के लिए खो गई, समाज में बदनामी, कितनी बदनामी होती है। वहां बदनामी नहीं होती, वहां कॉमन है। यहां तो बदनामी और उससे डर और उससे चिंताएं, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी का कुछ हो रहा है, पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है तो नौकरी भी नहीं कर सकते, जीवन दुखी अकेले। एक तो हुई अभी, दो बच्चे थे, बच्चे भी उन्होंने रख लिए, अकेली को भेज दिया घर जाओ। अब बच्चों के बिना तो माँ हो तो जी नहीं सकती, बेचारी अकेली रहती है। और उधर भाभियां, आप जानती हो आगे का कहानी, तो रहना ही मुश्किल, जीना ही मुश्किल। तो भारत की कल्चर इसको स्वीकार नहीं करती, भारत की नहीं है ना, ये क्रिश्चियंस की कल्चर थी। जब से वो कल्चर हमारे देश में आई, मुश्किल से अभी 15 साल से बढ़ी है, ज्यादा 25 साल अधिक से अधिक हुए इस कल्चर के। अशांति, टेंशन, बीमारियां, दुर्गति हो गई है लोगों की। तो बाबा ने ज्ञान देकर राह दिखा दी ना, सातों गुण आत्मा के और अनादि संस्कार देवताओं के। कौन से हमारे वर्णन करो जरा, वो हैं हमारे संस्कार। अभी देवता सुख देते तो नहीं है, पर कहा यही जाएगा ना, सुख देना, संपूर्ण पवित्रता, दृष्टिवृत्ति बहुत पवित्र। राज करने वालों की क्या एक स्थिति होती है, देखो जो राज करते हैं, सतयुग त्रेता में हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन राजा वही सफल हैं जो प्रजा का पूरा ध्यान रखते हो। यहां भी राजा वही बनेंगे जो अपने साथियों का भी ध्यान रखते हो। कमरे में 5 माताएं सोई हो और एक कहे मुझे तो मुरली पढ़ के ही सोना है, ये श्रीमत है, मुझे तो लाइट जलानी है, तुम सो या जागो, तो क्या होगा, गलत है या ठीक है, बोलो। ध्यान दूसरों का भी रखना पड़ेगा, समझदार व्यक्ति को दूसरों का ध्यान रखना ही पड़ता है। माताएं तो रखती हैं, आपके बच्चों को रात को पढ़ना हो दूसरी बात, उन्हें लाइट जला के पढ़नी है, आपके पास ज्यादा कमरे नहीं हैं, उन्हें लाइट जलानी है, आपको सोना है, आप कहोगे मुझे सोना है लाइट बंद करो, आप लाइट में ही सो जाएंगी। ध्यान रखते हैं या नहीं दूसरों का, माँ बन गई तो बच्चों का ध्यान रखना ही है, ये नेचुरल संस्कार है। हम भी एक दूसरे का ध्यान रखें, केयर करें, केयरिंग नेचर हो हमारी, ये राजा ही संस्कार है। राजा वही बनते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वजीरों की जरूरत नहीं होती। और द्वापर से भी जब वजीर होते भी हैं तो राजा बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसे नहीं जो वजीर ने कहा वही कर लिया। जहां ऐसा हुआ राजा कम बुद्धिमान है, तो वजीर ने जो कहा वही कर लिया, वहां दूसरों ने सत्ता हथिया ली। कोई भी मंत्री से मिल के सत्ता हथियाते रहे, कभी सेनापति ने हथिया ली, कभी किसी और ने हथिया ली। तो राजा वही बनते हैं जो बहुत बुद्धिमान हो, बहुत चरित्रवान हो, बहुत शक्तिशाली हो। अब मैं आपको एक लास्ट प्रैक्टिस बता देता हूं जो सबको करनी है। सब अपने चारों ओर रोज कम से कम एक बार, 3-4 बार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अपने चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल क्रिएट किया करें। क्रिएट समझ गए ना, बनाया करें। बाबा की दोनों मुरलियां, जब अव्यक्त बाबा का दिन था और अगले दिन संडे को, याद है ना, दोनों मुरलियां मास्टर सर्वशक्तिवान पर बहुत केंद्रित थी। तो हम अभ्यास किया करें, देखो आप सवेरे कर लिया करें, कभी भी मुरली में आने तक, मुरली के समय भी कर सकते हैं, मुरली के बाद भी कर सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी। 5 बार 7 बार संकल्प करो और ऐसा विजन बनाओ, चित्र बनाओ कि चारों ओर शक्तियों का पावरफुल प्रभामंडल बन गया, जैसे मैं शक्तियों के घेरे के बीच में बैठी हूं। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ घेरे के बीच में। क्लियर है ना? माताओं को क्लियर है? भाइयों को क्लियर है? रोज कम से कम एक बार, दो बार, ज्यादा भूल जाएं तो दो बार। इससे क्या होगा? हम बैड एनर्जी से सेफ रहेंगे। इविल सोल्स हमारे पास भटक नहीं सकेगी, घर में भी नहीं आ सकेगी। बहुत ध्यान दें माताएं अपने अपने घरों के लिए। आप ऐसा पावरफुल ओरा, इंग्लिश में कहते हैं ओरा, प्रभा मंडल, आभा मंडल बनाया करें अपने चारों ओर। ठीक है ना? सब करेंगे तो योग भी बहुत अच्छा होगा। देखो, अगर परम धाम में भी जाना है, योग को इंटरेस्टिंग बना दे, परम धाम में भी हमें जाना है ना योग में, तो प्रभा मंडल के साथ जा रहे हैं, बहुत रस आएगा। और परम धाम में बैठे तो हमारा ये आभा मंडल बहुत दूर दूर तक फैल रहा है। ऊपर बाबा, उसकी आभा तो सारे ब्रह्मलोक में जैसे फैल रही, इसलिए तो सर्वव्यापी कह दिया था ना। बहुतों को जब भगवान के साक्षात्कार हुए आचार्यों को, तो उन्होंने देखा कि उसका जो तेज है, उसका जो आभा मंडल है, वो तो न जाने कहाँ कहाँ फैल रहा है, जिधर देखता उधर वही दिखता है, बहुत ज्यादा है ना। देखो, आपको एक गहरी बात सुना दूं बाबा की। अश्रत्नों की किरणें सारे संसार में फैलती हैं, तो उनका आभा मंडल कितना बड़ा हो गया, संसार को कवर करता है। विजय रतन, बाकी 100, उनका भी बहुत ज्यादा। बाकी जो बहुत पवित्र आत्माएं हैं, अब देखो 1008, वो भी बहुत पवित्र अच्छी आत्माएं, उनका आभा मंडल भी समझ लो सारे भारत में फैलता है, इतना बड़ा। जो छोटे से छोटा पुरुषार्थी भी है ना, उसका आभा मंडल भी काफी बड़ा होता है। तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैलता है, ठीक है, फैलाया करें और इसका बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो मन भटकना पूरा हो जाएगा, चंचल मन की जो समस्या है ना वो खत्म हो जाएगी। इस तरह के अभ्यास करने से मन एकाग्र हो जाता है। मन को जब हम कोई काम दे देते हैं ना, फिर मन भटकता नहीं। ओम शांति।